अरमान के घर अचानक लीला और देवेश पहुंच गए थे। अरमान को इस बारे में खबर नहीं थी और अनजाने में नव्यांशी ने दरवाज़ा खोल दिया था। नव्यांशी को वहां देखकर लीला और देवेश को हैरानी हुई, पर उससे भी बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब अरमान ने आकर नव्यांशी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। अरमान और नव्यांशी के रिश्ते से कोई खुश नहीं था, देवेश तो खासकर नहीं। पिछले कुछ महीनों से चौहान फैमिली की वजह से राजावत फैमिली किस हद तक मुसीबत में आई थी, ये देवेश अच्छे से जानता था, और उसके बाद वो इस फैमिली की लड़की को अपनी बहू के तौर पर कभी स्वीकार नहीं करने वाला था। अरमान ने लीला और देवेश के साथ बेरुखी से बात करके उन्हें वहां से निकाल दिया था। इस वक्त वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे और देवेश को यही चिंता सता रही थी कि वो उनके इस रिश्ते के बारे में तेजिंदर को कैसे बताएगा। ऐसे में लीला ने ये बात तेजिंदर को बताने का कहा। ऊपर से वो अब गुस्से में भी नजर नहीं आ रही थी। देवेश ने उसकी तरफ देखा और उलझन भरे स्वर में कहा, आपने ऐसा क्यों कहा कि भाई साहब खुश होंगे? अरमान कभी बड़ों की नहीं सुनता है और उसकी वजह से मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। इतना बड़ा बेटा होने के बावजूद सारा काम मुझे और भाई साहब को संभालना पड़ रहा है। अंकुश के जेल जाने के बाद में देवेश का काम वैसे भी काफी बढ़ गया था। ऊपर से उन्होंने अरमान से काम संभालने के लिए कहा तो अरमान ने साफ मना कर दिया था। अब अरमान का इस कदर नव्यांशी के लिए बगावत करने की वजह से देवेश को और भी गुस्सा आ रहा था। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, थोड़ा तैयारी करने का समय दीजिए, फिर हम खुद शगुन लेकर चौहान पैलेस जाएंगे और पूरे रस्मों के साथ नव्यांशी का हाथ अपने अरमान के लिए मांगेंगे, लीला ने देवेश को आश्वासन दिया। भाई साहब नहीं मानेंगे और उनका क्या कहूँ, मैं भी इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, देवेश ने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ, लीला मुस्कुराकर बोली। चौहान फैमिली की एक बेटी पहले ही हमारे घर पर है, पर वेद की बहन का हमारे घर की बहू बनने की बात ही और होगी। कई बार दुश्मन को दबाने के लिए उसकी कमजोर कड़ी हमारे हाथ होनी चाहिए, और हर कोई अच्छे से जानता है कि वेद सिंह चौहान की कमजोरी उसके भाई बहन ही हैं। देवेश को अब अच्छे से लीला की बात समझ आ रही थी। वो धीमी आवाज में बोला, पता नहीं, मन नहीं मान रहा है। अपने मन को मना लीजिए, मन के साथ साथ अरमान को भी मनाना है ताकि वो उदयपुरा कर रहे, लीला ने इस बार सख्त आवाज में कहा, और उसके चेहरे के भाव और इरादे बता रहे थे कि वो इस बार पीछे नहीं हटने वाली है। देवेश चुप हो गया था और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। उनकी आंखें बंद थीं और उन्होंने मन ही मन कहा, ये तुमने क्या कर दिया अरमान, तुम्हें इस बात की शिकायत थी कि मैं हमेशा कठपुतली बनकर रहा, लेकिन चौहान फैमिली की लड़की के साथ रिश्ता बनाकर तुमने अपनी डोर खुद किसी और के हाथ में देने वाला काम किया है। सच जानने के बाद भाई साहब और भाभी कभी पीछे नहीं हटेंगे। देवेश आज तक अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया था, अंदर ही अंदर वो इस बात को स्वीकार भी करता था, और अब उसे अरमान के लिए बुरा लग रहा था। सिर्फ देवेश को ही नहीं, अरमान को भी इसी बात की चिंता हो रही थी। नव्यांशी और रोहन को बचाने के लिए अरमान ने उनके रिश्ते को स्वीकार तो कर लिया था, पर आने वाली मुसीबत से वो भी वाकिफ था, इसलिए उनके जाते ही अरमान ने नव्यांशी पर दरवाजा खोलने के लिए गुस्सा किया और बातें अधूरी छोड़कर अपने वर्क स्पेस में आ गया था। नव्यांशी जल्दी से उसके पीछे गई और कमरे के अंदर आकर वापस दरवाजा बंद कर दिया था। उसने अरमान की तरफ देखा और उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, उनके सामने तो तुम अच्छे से हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे थे और अब उनके जाते ही तुम्हारे सुर बदल गए। नव्यांशी चलते हुए अरमान के पास गई। अरमान ने उसकी आंखों में देखा और गंभीर आवाज में कहा, क्या तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि तुमने थोड़ी देर पहले क्या किया है? नव्यांशी बड़ी माँ को तुम अच्छे से जानती हो, और हमारे रिश्ते के बारे में जानने के बाद उन्हें अच्छा मौका मिल गया आराम से मिस्टर चौहान और शिवांशा के पास पहुँचने का। अजीब बात है, मुझसे ज्यादा तुम्हें मेरे भाई भाभी की चिंता हो रही है। आई नो शिवांशा भाभी के लिए तुम्हारे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है और तुम उन्हें अपनी बहन मानते हो, पर अब उनकी चिंता करना छोड़ो, भाई खुद देख लेंगे, तुम्हारी बड़ी माँ जैसे लोगों से निपटना उन्हें अच्छे से आता है, नव्यांशी ने बेपरवाही से कहा। लेकिन अरमान ने उसे समझाने के लिए दोबारा मुँह खोला ही था कि नव्यांशी ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया था। उसकी इस हरकत पर अरमान के शब्द उसके गले में अटक कर रह गए थे। नव्यांशी ने उसके होठों पर उंगली रखी और भौहें से कोड़कर कहा, क्या थोड़ी देर के लिए तुम अपनी फैमिली, मेरी फैमिली, अपने दोस्त, भाई, आसपास के लोगों के बारे में सोचना छोड़कर खुद के बारे में नहीं सोच सकते हो क्या? मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, अरमान ने धीमी आवाज में कहा। ठीक है, अगर दूसरों के बारे में सोचने का इतना ही शौक है तो मेरे बारे में सोचो, नव्यांशी ने उसे छेड़ते हुए कहा। अरमान ने उसकी तरफ घूर कर देखा और नव्यांशी से पीछे हटना चाहा, लेकिन नव्यांशी ने जल्दी से उसे अपने दोनों हाथों से थाम लिया था। उन दोनों की आंखें आपस में उलझी हुई थीं। इस बार नव्यांशी सीरियस अंदाज में बोली, ठीक है, बहस नहीं करते और ना ही किसी तरह का मजाक, मैं तुमसे सच में तुम्हारा जवाब जानना चाहती हूँ। तुमने अपनी फैमिली के सामने झूठ नहीं बोला था ना अरमान, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नव्यांशी ने अरमान से ये सवाल पूछ तो लिया था, लेकिन उसका दिल डर के मारे जोर से धड़क रहा था कि अगर अरमान ने मना कर दिया या ये कहकर बात को टाल दिया कि उसने लीला और देवेश को भगाने के लिए झूठ बोला था, तो सच में उसका दिल टूटने वाला था। नव्यांशी आंखों में उम्मीद लिए अरमान की तरफ देख रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी, जैसे अरमान के जवाब पर उसकी जिंदगी या मौत का सवाल हो। अरमान ने गहरी सांस ली और हल्के से हां में सिर हिला दिया था। उसने धीमी आवाज में कहा, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर अचानक अरमान की आंखें बड़ी हो गई थीं और उसके शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। जब उसके मुंह से प्यार का इजहार सुनते ही नव्यांशी ने उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अरमान इस लम्हे के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कुछ पल तो उसे ये समझने में लग गए थे कि आखिर हुआ क्या, पर फिर वो भी उस एहसास में खोने लगा था। आखिर पहली बार नव्यांशी उसके इतने करीब आई थी। कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। अरमान ने तुरंत अपना चेहरा नव्यांशी से दूसरी तरफ कर दिया। उसके गाल लाल हो रहे थे, लेकिन हाँ, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुम बहुत बुरे हो, नव्यांशी ने अरमान के सीने पर हल्का सा मारा। वो गहरी सांस लेकर खुद की उखड़ी हुई सांसों को सामान्य कर रही थी। कुछ पल रुककर उसने कहा, इतना टाइम कौन लगाता है, हमेशा तुम्हारा बोल्ड और सख्त अंदाजी देखा है, पर अब मुझसे ज्यादा तुम शर्मा रहे हो। नव्यांशी के कहने पर अरमान ने तुरंत उसकी तरफ देखा और उसे अपने करीब खींचकर उसे गले लगा लिया था। नव्यांशी की आंखें बंद थीं। वो अरमान की बढ़ी हुई दिल की धड़कन को संगीत की तरह सुन रही थी। थैंक यू सो मच अरमान, नव्यांशी ने धीमी आवाज में कहा। सिर्फ थैंक यू कहने से नहीं होगा, ये जो बड़ी सी लड़ाई तुमने छेड़ी है, इसमें अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है नव्यांशी, अरमान बोला और तुरंत नव्यांशी से अलग हो गया था। उसके चेहरे के भाव इस वक्त गंभीर थे और आगे वेद और शिवांशा के रिश्ते में कोई परेशानी नहीं आए, इसका वो पहले ही इंतजाम करना चाहता था।
प्रॉमिस करो कि तुम अकेले में कभी बड़ी माँ और मेरी फैमिली के किसी भी लोगों से नहीं मिलोगी, और साथ ही अगर वो तुम्हें शिवांशा के बारे में कुछ भी कहें तो तुम यकीन नहीं करोगी। उन्हें शिवांशा कभी से पसंद नहीं है, और जब से मिस्टर चौहान ने शिवांशा से शादी की है तब से वो बुरी तरह बौखला गए हैं और कुछ भी करके उनके रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वो किस तरह बार बार तुम्हारे घर पहुँच जाते थे, ये तुमसे छुपा हुआ नहीं है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल रोहन के तौर पर तुम्हारे सामने है। रोहन की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे सजा मिली क्योंकि शिवांशा और मिस्टर चौहान की शादी हुई। अरमान ने नव्यांशी को पहले ही सब कुछ समझा दिया था ताकि कल को अगर लीला या बाकी परिवार के लोग उसे सच बताने की भी कोशिश करें तो नव्यांशी उस पर यकीन न करे। मुझे पता है और तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अब क्या तुम थोड़ी देर के लिए परेशान होना छोड़कर हमारे इस नए बने रिश्ते को टाइम दे सकते हो, नव्यांशी ने बातचीत के रुख को बदलते हुए कहा। अरमान ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। नव्यांशी के होठों पर भी स्माइल आ गई थी, लेकिन उन दोनों को ही आगे कुछ कहने का मौका नहीं मिला। कमरे का दरवाजा अचानक से खुला और सामने मनन खड़ा हुआ था। मनन ने नव्यांशी की तरफ घूर कर देखा जो अरमान के कुछ ज्यादा ही पास खड़ी हुई थी और उन दोनों के फेस पर स्माइल भी थी। मनन ने मुंह बनाया और कहा, अरमान मैंने तुम्हें समझाया था कि इसकी बातों में मत आना, वरना ये हमेशा तुम्हें अपना पर्सनल हाउस हेल्पर बनाकर रखेगी। तुम इससे बात कर रहे हो और स्माइल भी कर रहे हो, बहुत पछताओगे तुम। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है, मनन अचानक अरमान के मुंह से निकला। नव्यांशी के चेहरे पर मनन को चिढ़ाने वाली स्माइल थी। मनन पैर पटकते हुए अरमान के पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाने लगा। मैं मेरे भाई को बचा लूंगा, अरमान मुझसे बड़ा है पर मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं तुम्हें इस खूबसूरत चुड़ैल के जाल में नहीं फंसने दूंगा, मनन अरमान को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगा। अरमान ने पलटकर नव्यांशी की तरफ लाचारी भरी निगाहों से देखा। नव्यांशी ने पलके झपकाकर उसे शांत रहने को कहा। वैसे भी अगर नव्यांशी को अरमान के साथ आगे बढ़ना था तो उसे अरमान के साथ साथ मनन को भी एक्सेप्ट करना था। मनन अरमान को वहाँ से ले गया था जबकि नव्यांशी अकेली रह गई थी। वो वहाँ लगी चेयर पर बैठी, उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ शिवांशा इस वक्त अभी भी एडमिशन फॉर्म की लाइन में लगी हुई थी और आखिरकार उसकी बारी आ ही गई थी। उसने इधर उधर देखा लेकिन वेद नजर नहीं आया। शिवांशा अपने आप ही आगे बढ़ गई थी। उसे एडमिशन फॉर्म देते हुए वहाँ बैठे एम्प्लॉय ने पूछा, आपका नाम बताइए। शिवांशा हड़बड़ाकर जल्दी से अपना नाम बताने लगी। शिवांशा ठाकुर, उसकी बात पूरी होने से पहले ही वेद ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा। शिवांशा, वेद सिंह चौहान। शिवांशा ने जल्दी से वेद की तरफ देखा जो उसके पास में खड़ा हुआ था और उसे एहसास तक नहीं हुआ। कुछ सेकंड्स पहले ही शिवांशा ने इधर उधर देखा था, तब उसे वेद नजर नहीं आया था। शिवांशा वेद की तरफ हैरानी से देख रही थी तो वहीं वेद की आंखों में सख्ती थी। अचानक वेद को वहां देखकर आसपास के स्टूडेंट्स का ध्यान उसकी तरफ चला गया था। ये पहली बार नहीं था जो वेद वहां पर आया था या उदयपुर के लोगों से उसका चेहरा छुपा हुआ था। तो ये लड़की वेद सिंह चौहान की वाइफ है, एक लड़की ने धीमी आवाज में फुसफुसाकर कहा। थोड़ी देर पहले मैं इसे इसकी साड़ी और लुक की वजह से जज कर रही थी और हद है इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, दूसरी लड़की ने अफसोस भरे लहजे में कहा। वहीं वेद को अचानक अपने सामने देखकर वहां बैठा एम्प्लॉय भी एक पल के लिए खड़ा हो गया था। उसने हल्का सा सर हिलाया और कहा, मिस्टर चौहान मुझे नहीं पता था ये आपकी वाइफ है, और आप बता देते तो इन्हें इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। आप घर पर भी एडमिशन फॉर्म मंगवा सकते थे। वेद ने तुरंत उसकी तरफ देखा और सधे हुए लहजे में कहा, ये यहाँ स्टडी करने वाली है तो इसे यहाँ की नॉर्मल फॉर्मेलिटी को पूरा करना आना चाहिए। बाकी स्टूडेंट भी तो लाइन में ही लगे हुए हैं। वेद के आते ही वैसे ही सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया था, और उसका जवाब सुनकर कोई उसके जवाब से इम्प्रेस हो रहा था तो कोई हैरान। वेद ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि अगर शिवांशा उसकी वाइफ है तो उसे इसका कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलने वाला है। शिवांशा को फॉर्म दे दिया गया था। जब भी वेद उसके सामने इस तरह बाकी लोगों के बीच भीड़ में नॉर्मल तरीके से बात करता था तो शिवांशा को न जाने क्यों उससे थोड़ा डर महसूस होता था। हालांकि वेद का ये सख्त अंदाज बाकी लोगों के लिए था, फिर भी शिवांशा की नजरें झुकी हुई थीं। फॉर्म लेने के बाद वो दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। गाड़ी में बैठते हुए वेद ने शिवांशा की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि आज से तुम्हारी पहचान मुझसे जुड़ी हुई है, तो तुम इस तरह पब्लिकली अपना पुराना सरनेम कैसे बोल सकती हो? मैं भूल गई थी, शिवांशा ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी ये छोटी सी भूल हम दोनों को प्रॉब्लम में डाल सकती है, वेद ने ठंडी आवाज में जवाब दिया और गाड़ी स्टार्ट की। वेद का इतना सख्त चेहरा देखकर शिवांशा की हिम्मत तक नहीं हुई कि वो आगे कुछ बोल सके, और वो चुपचाप बैठी हुई थी। लेकिन साथ ही उसे इस बात की भी तसल्ली थी कि कॉलेज के बाद वो लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाने वाले थे। लेकिन उसने देखा कि वेद फिर से गाड़ी घर की तरफ ले रहा था। आज का चैप्टर ज्यादातर अरमान और नव्यांशी पर ही था, और देखा जाए तो उनके रिश्ते को भी आगे बढ़ाना जरूरी है। देखते हैं लीला अब क्या करती है और वेद सब कुछ कैसे संभालता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।